अभिमान पहले ही धीरे धीरे आशिका की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ऊपर से उसके इस तरह आज अचानक करीब आने पर अभिमान काफी बेचैन महसूस कर रहा था। तुम कब तक अपनी फैमिली से इस तरह बचकर भागती रहोगी? मुझे कुछ परमानेंट इलाज करना होगा, अभिमान ने गहरी सांस लेकर कहा। रात को काफी देर हो गई थी, इस वजह से अभिमान सीधा घर चला गया था। घर पर जो तमाशा हुआ था उसके बाद उसे निशा से भी बात करनी थी। जैसा कि अभिमान को अंदाजा था, निशा अब तक सोई नहीं थी। अभिमान निशा के कमरे में पहुंचा तो निशा जाकर सीधे उसके सीने से लिपट गई थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे पाई, ऊपर से मेरा नाम लेकर वो तुम्हें मजबूर कर रहे हैं, निशा ने भारी आवाज में कहा। अभिमान ने गहरी सांस ली और निशा को सहलाते हुए कहा, ये लोग हमेशा से ऐसे ही थे। आपकी हेल्थ के चक्कर में मैंने कभी आपको बताया नहीं। मेरी यही कोशिश थी कि आपको यहां से कहीं दूर ले चलूं, लेकिन आप ही चाहती थीं कि मैं इनके बीच रहूं। देख लीजिए इसका क्या नतीजा निकल रहा है, वो फिर से हम दोनों की लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं। मैं जानती हूं कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूं, निशा ने धीमी आवाज में कहा। वो अभिमान से अलग हुई और उसके गाल पर हाथ रखकर सख्त आवाज में बोली, अब तक मैंने तुम्हें यहां इसलिए रोक कर रखा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा तुमसे कोई छीने। मुझे लगा था कि तुम्हारे पापा इतने सालों तक हमसे दूर रहेंगे तो वो वापस आएंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती मॉम, आप अच्छे से जानती हैं। इस खानदान के मर्दों ने हमेशा अपनी पत्नी को धोखा दिया है, फिर आपने कैसे उम्मीद कर ली कि आकाशदीप राजवंश जैसे इंसान जो पिछले 16 सालों से हमसे दूर हैं वो अपनी शादी में लॉयल रहेंगे? अभिमान ने तंज भरे लहजे में कहा। अब तक तुम मेरी वजह से मजबूर थे और कुछ कर नहीं पाए, आज मैं तुम्हें हर बंधन से आज़ाद करती हूँ। अभिमान, तुम्हें इस घर के लोगों के साथ रिश्ता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी पत्नी के साथ अकेले खुशी से, निशा बोलते हुए रुक गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि अभिमान ने सबके सामने आशी से तलाक की बात की थी, जबकि सबको यही लगता था कि आशी से उसकी लव मैरिज हुई है। वो दोनों अलग रह रहे थे तो उसकी वजह अभिमान और आशुतोष के बीच की रंजिश थी। अचानक निशा के चेहरे के भाव गहरे हो गए, उसने अभिमान की आंखों में देखकर कहा, तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हो, उससे तलाक चाहते हो। अभिमान, कहीं तुम भी इस खानदान के मर्दों की तरह अपनी पत्नी को धोखा तो नहीं दे रहे? सपने में भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इस घर के लोगों जैसा हूँ। आशी से मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। डिटेल में मैं आपको सब चीज़ें नहीं समझा सकता, बस ये समझ लीजिए अगर आज मेरी और आशिका सिंघानिया की शादी हुई है तो वो रचित की एक गलती का नतीजा है। मैं उससे प्यार नहीं बल्कि नफरत करता हूँ, अभिमान ने जवाब दिया। वो किसी भी तरह का इल्ज़ाम अपने किरदार पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हारी शादी को लेकर तुम जो फैसला लेना चाहो ले सकते हो, बाकी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ बेटा, निशा ने कहा और फिर वो रोने लगी थी। अभिमान से अलग होने का वो सोच भी नहीं सकती थी। इतने सालों में अभिमान ही उसके जीने का सहारा था। अभिमान के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने निशा के आंसू साफ किए और कहा, क्या लगता है सिर्फ मैं ही आपके जीने की वजह नहीं हूँ? आप मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, मैं बहुत आगे आ गया हूँ और इन लोगों को हमारे साथ किए हुए हर एक अन्याय का बदला लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे उस आशिका सिंघानिया से शादी करके उसके साथ ही क्यों ना रहना पड़े। बेटा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, निशा ने तुरंत कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी तरह अभिमान भी एक ज़बरदस्ती की शादी में बंद कर रहे जहाँ प्यार के बजाय सिर्फ मजबूरियाँ हों। चिंता मत कीजिए, मैं कभी निशा कपूर नहीं बनूंगा। उस आशिका सिंघानिया को मेरे साथ रहना है ना, बहुत शौक चढ़ा है उसे साथ निभाने का। इस शादी से पहले ही मैं उसके दिमाग से ये सारा फितूर उतार दूंगा। जो इंसान उसका साथ दे रहा है वो खुद अपने फायदे के लिए उसे धोखा देगा, अभिमान ने काफी कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया। इसका यही इरादा था कि वो कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढ ले जिससे स्काई शादी करना चाहता था, फिर उसके मिलने के बाद वो स्काई को अपने तरीके से अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। निशा ने अभिमान की बात पर सहमति जताई, अभिमान उसकी तरह कमजोर नहीं था इसलिए उसे उस पर पूरा यकीन था। इशिका को हॉस्पिटल में एडमिट हुए पूरे 10 दिन बीत चुके थे। उसे कोई बड़ी एक्सटर्नल चोट नहीं आई थी, जो भी छोटी मोटी चोटें आई थीं वो इन 10 दिनों में ठीक हो चुकी थीं और इशिका को डिस्चार्ज मिल गया था। वो वहां से सीधा गोवा जाने के लिए निकल गई थी। अभिमन्यु उससे पहले गोवा पहुंच चुका था, इशिका केशव और राधिका के साथ ही वापस आ रही थी। अभिमन्यु इस वक्त इशिका के उस घर के आगे खड़ा हुआ था जहाँ वो पहले किराए पर रहती थी। तुमने इस घर को पहले के हिसाब से तैयार करवा दिया है ना, मैं यहाँ ज्यादा नहीं आया हुआ हूँ लेकिन किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए, इशिका को शक नहीं होना चाहिए, हमें उसे एक नॉर्मल लाइफ देनी है, अगर वो स्ट्रेस लेगी तो उसकी तबीयत और प्रेगनेंसी पर असर होगा, अभिमंजू ने दिशांक की तरफ देखकर कहा। वो इशिका की हर छोटी चीज को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहा था। डोंट वरी मिस्टर राजवंश, एक दिन का भी इधर से उधर नहीं हुआ है, मैं घर से लेकर हमारी कंपनी और लैब हर एक चीज पहले के हिसाब से तैयार करवा चुका हूँ, दिशांक ने जवाब दिया। अभिमन्यु घर और बाकी चीजों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। दिशांक से बात करने के बाद वो पृथ्वी की तरफ मुड़ा और बोला,
इशिका इस घर में अकेले जरूर रह रही है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। एनी टाइम उससे कुछ दूरी पर कुछ गार्ड्स रहने चाहिए। अगर किसी ने भी अपने काम में लापरवाही की तो अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात, गलती से भी कोई इशिका की नजरों में नहीं आना चाहिए। सर, सारा इंतजाम हो गया है और मैंने इस आसपास के एरिया में सीसीटीवी इंस्टॉल करवा दिया है। उनकी स्कूटी में हिडन जीपीएस ट्रैक कर दिया है ताकि हम उनकी लोकेशन का पता कर सकें, पृथ्वी ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया था। इशिका की तबीयत सही थी, इस वजह से वो उस तरफ से थोड़ा राहत में था। बाकी के इंतजाम उसने कर दिए थे। इशिका की याददाश्त वापस आने तक अभिमन्यु को उसे हर चीज से प्रोटेक्ट करना था। अभिमन्यु उनसे बात कर रहा था तभी उसके पास राधिका का मैसेज आया। इशिका और राधिका उस घर से कुछ ही दूरी पर थे। अभिमन्यु ने गार्ड्स को उनकी पोजीशन देने को कहा और खुद वहां से हट गया था। वहीं दूसरी तरफ वसुधा को भी इशिका के एक्सीडेंट के बारे में पता था। अब तक अभिमन्यु ने उसे इशिका से मिलने नहीं दिया था, लेकिन जब वसुधा को पता चला कि इशिका वापस गोवा लौट रही है तो वो किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं थी। अरे ऐसे कैसे सब भूल गई है, वो मेरी बहू है और मुझे अच्छे से पता है कि उसे सब कुछ कैसे याद दिलाना है। मैं भी देखती हूँ कि उसके वापस आने के बाद वो लड़का मुझे अपनी बहू से मिलने के लिए कैसे रोकता है, वसुधा ने सख्त आवाज में कहा। और इस वक्त वो पहले की तरह बिना किसी को बताए सीधा इशिका के घर की तरफ जा रही थी।